Surat Hamim Sajda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Tanzeelum Minar Rahmanir Rahim. یہ خدا رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. آیات تو بہت سی اس طرح سے شروع ہوئیں، لیکن یہاں اگر آپ غور کریں تو عربی زبان کے قرآن کی بات ہوئی. اصل میں قرآن عربی ہی میں ہوتا ہے. آپ اور میں جو ترجمہ کرتے ہیں یا ترجمے والا قرآن یوز کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. جو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے وہ اس کے عربی لفظوں کو پڑھنے کا ہے. آپ اور میں اپنے ساتھ ایک نیت کرتے ہیں کہ ہم نے کم از کم اتنی عربی جس سے میں قرآن کو سمجھ سکوں وہ سیکھنی ہے. اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کس کو شوق ہے عربی سیکھنے کا؟ ماشاءاللہ، ایسے ہی پورا دے گا. اگر آپ کو آفر کی جائے عربی گرامر، کتنے لوگ جوائن کریں گے؟ لفظ گرامر لوگ بولیں کہ نہ بولیں؟ چلیے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے عربی سیکھنے کا کوئی بندوبست کر دے. ہم تیار ہیں اس کے سیکھنے کے لیے. یہ تو نہیں کہ بندوبست ہو گیا تو ہم غائب ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. آپ دیکھیے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ کام کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہماری ماسیاں گاؤں سے آتی ہیں عموماً. جب اپنے بڑے بڑے شہروں میں آتی ہیں تو کچھ لوگ انگلش کے بولتی ہیں، اوکے منڈے کو آؤں گی، منی دے دیں. تو جب وہ بالکل چٹی کوری ان پڑھ ہو کر یہ کر سکتی ہیں تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اس قرآن کی ہر جگہ ضرورت ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی حساب کتاب عربی میں ہوں گے، حشر بھی عربی میں. پتہ چلا وہیں پریشان ہے، حساب سے زیادہ یہ فکر پڑی ہے. یہ تو اللہ کو پتا وہ کیسے لے گا، لیکن عربی سیکھنی ہے. اور یاد رکھیے، دل پر اس قرآن کا نزول ہی تب ہوتا ہے جب پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں. آپ کسی کی جس بات کو کب سمجھتے ہیں؟ جب آپ اس کی ڈائریکٹ بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور اگر اگلے کے ہر جملے کو ڈکشنری کھول کے ٹیلی کرنا پڑے، گرامر کھولے، سیکھے، ڈھونڈے، ٹینس چیک کرے، پھر کرے، تو پھر کیا وہ محبت کی چاشنی رہے گی؟ آج ہمارے کتاب سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم پانچ سپارے پڑھ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک دن میں، اللہ تعالیٰ اور بھی پڑھنے کی توفیق دے، لیکن ہم اس کو چونکہ سمجھ نہیں رہے ہوتے اس لیے ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس کی توفیق دی. لیکن کچھ لوگ جو اس راستے کو مشکل کرتے ہیں، ان کی کوششوں کا ذکر ہے. یاد رکھیں، سورت حامیم سجدہ فرکشن کی صورت ہے، ریزسٹنس. اس قرآن کو سننا ناممکن کر دو، ایسی ڈسٹریکشنز اور اتنی ارد گرد چیزیں پیدا کر دو، پھیلا دو، کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو سن نہ سکیں. اسی لیے فرمایا وقالوا قلوبنا فی اکنہ، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے رو گردانی کی، منہ ہی پھیر لیا اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. ان کو نہیں پتا جس کو یہ غلاف کہتے ہیں، یہ اللہ کا ٹھپا ہے، توفیق چھین لی اللہ نے. کیوں؟ نہ سنو، نہ سمجھو، نہ عمل کرنا پڑے گا. آج بھی لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن سن کے ڈر لگتا ہے. بند کتاب کی بڑی رسپیکٹ، کھلی کتاب سے خوف کھاتے ہیں. اور مجھے تو پورے قرآن میں نہیں ملا، آپ کو بھی 24 پاروں میں تو ایک آیت نہیں ملی کہ نہ پڑھو گے تو بچ جاؤ گے، پڑھ کے عمل نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. تو یاد رکھیے، یہ دھوکہ ہے. کوئی کہتا ہے ہماری تو ان سے ویو لینتھ نہیں ملتی، ہم سے اس سے نہیں. اور یہ جو وقر ہے، یہ وقرا کیا ہے؟ ہماری اور زندگی، مولویوں کی اور زندگی، ہماری اور ویلیوز ہیں. ان کو کیا پتا ہماری کیا مسائل ہیں. آج بھی لوگ قرآن سے رکنے اور روکنے کے لیے اسی طرح کے خوبصورت جملے بولتے ہیں کہ جی ان کو کیا پتا، ان کی کون سی زندگی میں یہ ساری مشکلیں ہیں جو ہماری زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. منہ پہ آ کے نبی کو کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف تو بلا رہا ہے ہم اس کو نہیں سنیں گے، ہمارے کان بہرے ہو گئے اور ہمارے تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہے، ویو لینتھ نہیں ملتی تیری میری، ہماری آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو واقعی قرآن سمجھ آ جائے اس بندے کو، اور جس کو سمجھ نہیں آیا اس کی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے، اس کی پرائیورٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ قرآن ہماری ویلیوز کو چینج کرتا ہے، ہماری پرائیورٹیز کو سیٹ کرتا ہے. اور جب سن رہے ہوتے ہیں تو کیا دل نہیں بول رہا ہوتا ساتھ ساتھ؟ ये क्या है, ये कैसा है, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, ये आज की बात है। यानी जब हम कुरान पढ़ा भी रहे होते हैं ना, हमारे अंदर एक जंग चल रही होती है और हम उसके जुमले बोल रहे होते हैं। तो याद रखिए, ये एक जिंदा हकीकत है, इस जिंदा किताब को वक्त देने की जरूरत है। ऐ नबी, इनसे कहो, मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा, मुझे वही के जरिए बताया जाता है कि तुम्हारा रब तो बस एक ही रब है, बस तुम सीधे उसी का रुख इख्तियार करो और इससे माफी चाहो। तबाही है मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते। हाईलाइट कर ले रेफरेंस, ज़कात ना देना शिर्क है। कौन सा शिर्क है? शराकत फिल माल। हर चीज पे माल खुलता है और 100 में से 250 पे नहीं खुलता, और आखिरत के मुनकर हैं। किसी ने एक छोटा सा क्लिप भेजा, सवाल किया था किसी ने किसी दीन वाले से, क्या माँ बाप को ज़कात दी जा सकती है? तो वो जवाब क्या देना था, वो उसमें कोई 15 मिनट रोए कि ये वक्त आ गया कि माँ बाप को ज़कात देने की आप सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने पाला, उन्होंने पोसा, उन्होंने तो ज़कात के माल पे आपको नहीं पाला। तो याद रखिए, माल जब अपनों पे देते वक्त ये दिल घुटे, तो क्या सारा कुछ वो 2.5% में पूरा करना है? बूढ़े माँ बाप को ज़कात की रोटियां खिलानी है। अंतवा मालु कली अभी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। अगर बचपन में वो हमें फेंक देते कि किसी कूड़े के ढेर पे, तो आज हम कहाँ होते? तो ज़कात की अदायगी फर्ज है। अल्लाह हमारी भूली बिसरी ज़कात अदा करा दे या माफ कर दे। पिछली जिंदगी में जब नहीं दी, हिसाब लगा के देनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी के पास माँ बेटियां आईं, मोटे मोटे कंगन पहने हुए थे। कहा, इसकी ज़कात देती हो? कहा, नहीं। कहा, जब से बने हैं तब से नहीं दी? कहा, नहीं। कहा, तुम पसंद करती हो कि क़यामत के दिन तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाएं? कहा, नहीं। कहा, फिर इनकी ज़कात दो। उन्होंने कंगन उतारे, अल्लाह के नबी को दिए। कहा, आप ये कंगन रख लें, हमें नहीं पता कितना देना है, आप इसको अल्लाह के रास्ते में रख लें। और आखरत के मुनकर हैं, यानी मुशरिक वो जो ज़कात ना दे और आखरत का मुनकर। आखरत का मुनकर क्या है? कि कोई नहीं सवाब हिसाब किताब, ऐसे ही कही हुई बातें, सब माफ होगा। अल्लाह चाहे माफ कर दे, उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन अपनी कोशिश करें। रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक अमाल किए, उनके लिए यकीनन ऐसा अजर है जो कभी, जिसका सिलसिला टूटने वाला नहीं। ये अब अंदाज आपको इन आखिरी बारों में मिलेगा, कहीं गैर ममनून अजरुन गैर ममनून। क्यों माना? कितने साल? 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी मिल गई, मानते रहे। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलु सालिहात। अजर क्यों है अनलिमिटेड? हुम फीहा खालिदून। तो इसका जवाब लिख ले, अल्लाह इनको 1,000 साल की भी उम्र देता ना, तो इन्होंने मानते ही रहना था। ये होती इस्तकामत। और जब गैर ममनून से पढ़ती हूँ, तो क्या जहन में आता है? एक मिरर रख के उसके आगे एक दूसरा मिरर रखें, आजमा लीजिएगा घर जाके। आप देखिए, एक मिरर में से दूसरा मिरर और पीछे पूरे मिरर्स की लाइन बन जाती है। नेकियां भी इसी तरह होती हैं। एक नेकी का बीज आप डाल जाएं, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और नेकियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चलेगा। ए नबी, इनसे कहो, क्या तुम इस जात से कुफर करते हो जो, और दूसरों को इसका हमसर ठहराते हो, जिसने जमीन को 2 दिनों में बनाया, वही तो सारे जहान वालों का रब है। इसने जमीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से इस पर पहाड़ जमा दिए। यह आपको तरतीब दिख रही है, 6 दिनों में कब क्या काम पहले हुआ। इसमें भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का दर्स मिल रहा है, क्योंकि ये पैगाम कुरान में बहुत जगह आता है कि दुनिया 6 दिन में बनी, फी सित्तत अय्याम। तो ये मुकाम नोट कर लीजिए, इन 6 दिनों का ब्रेक डाउन है, पहले क्या बना, बाद में क्या बना, ताकि तुम भी अच्छी तरह से हर चीज की प्लानिंग करके काम करना सीखो। क्या पहले बना? जमीन को 2 दिनों में बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, ऊपर इस पर पहाड़ जमा दिए और इसमें बरकतें रखी। पहाड़ों के अंदर जो खजाने छुपे हुए उनकी तरफ इशारा है, माइंस। और इसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब और हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। ये सब काम 4 दिन में हो गए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो इस वक्त महज धुआं था। ये आसमान जिस शक्ल में आज आपको मुझे दिखता है, वैसे नहीं था शुरू में। इसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। यहां देखिए, जमीन और आसमान की इताअत और बंदगी की बात है। तौअन व करहन, दोनों का जवाब सुन लीजिए। दोनों ने कहा, हम आ गए फरमाबरदारों की तरह। कितनी बड़ी है जमीन हमसे, पांव में रोंदी जाती है, ह्यूमिलिएट हुई है, आजजी है ना। कभी किसी जगह की जमीन ने कहा, उठाओ इधर से अपने बोझ, कोई पांव रखे और जमीन उछाल के उसको फेंके। आपको मुझे भी यही इताअत करनी है। आसमान कितने सालों से ऊपर है, कभी तकब्बुर का एक जुमला उसने बोला, देखो मैं कितना ऊंचा हूं, और जमीन और आसमान लड़ रहे हो। वो कहेगा तू नीची है, वो कहे मैं ऊंचा हूं। ये कुछ नहीं, ये कायनात का दर्स है कि अल्लाह ताला ने हर कायनात की चीज को पैदा भी किया और उनको उनका काम भी बता दिया, और खुशी से मानते हैं। और इससे पता चलता है कि जो काम करे इंसान खुशी के साथ करे, बोझ समझकर, एहसान समझकर, और धमकियां देते हुए जो काम किया जाता है पता नहीं उसका सवाब होता है कि शायद कुछ और ना हो जाए। फिर फरमाए तब इसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसका कानून वही कर दिया। 7 आसमान है, 7ों के मुख्तलिफ काम है। और आसमान ने दुनिया को अपने चिरागों से आरास्ता किया और इसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक जबरदस्त तालीम हस्ती का मंसूबा है। आपके मेरे लिए उसने इतना कुछ पैदा कर दिया। यहां देखिए अल्लाह ताला ने अकवात की बात की है, यानी जितनी जिस चीज में जिस चीज की जरूरत थी उसको रखा। आपको था कि दुनिया में मेंढक कितने हैं, जितने होने चाहिए, मछलियां कितनी हैं, जितनी होनी चाहिए। हर एक नस्ल को चलाने के लिए अल्लाह ने सेट कर दिया। कभी किसी जानवर को अपने फैमिली प्लानिंग करते नहीं सुना होगा। चींटियों को देख लीजिए, जितनी है उतनी काफी, अगर इससे ज्यादा हो जाती तो हमारे खानों में पड़ जाती। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ने आपको मुझे भी जो दिया ना वो हमारी औकात का दिया है। इससे ज्यादा देता तो हम फट जाते, इससे कम देता तो हो सकता है हम ना शुक्रेपन में आ जाते या बेसब्रे हो जाते। फरमाए अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो, मैं तुमको इसी तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ जैसा आद और समूद पर नाजिल हुआ था, जब अल्लाह के रसूल इनके पास आगे और पीछे हर तरफ से आए और इन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, तो उन्होंने कहा हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, बस हम इस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। मुमारी आद का हाल यह था कि वो जमीन में किसी हक के बगैर बड़े बन बैठे और कहने लगे कौन है हमसे ज्यादा जोरावर, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वत, क्या तर्जमा होगा इसका इंग्लिश में, वी आर सुपर पावर्स। आप देखिए कि अपने दौर में हर बड़े ने यही दावा किया, इनको ये ना सूझा कि जिस जात ने इनको पैदा किया वो इनसे ज्यादा जोरावर है। वो हमारी आयात का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा इन पर भेज दी ताकि इन्हें दुनिया ही की जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो इससे भी ज्यादा रुसवा कुन है, वहां कोई इनकी मदद करने वाला ना होगा। क्या पता चला कि अल्लाह ने इनको नेमतें दी थी, खूबियां दी थी, मगर उन्होंने लाइफ स्टाइल बनाकर इन खूबियों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया। रहे समूह तो इनके सामने हमने राह रास्त पेश की, मगर उन्होंने रास्ता देखने की बजाय अंधा बनकर रहना ही पसंद किया। अंधा बनकर रहना क्या, अल्लाह के दिए हुए लाइफस्टाइल को छोड़कर अपने मनपसंद तरीकों का स्टाइल अपना लिया। और कितना है बदबख्त वो कि जिसको हिदायत का रास्ता दिखाया जाए और वो कहे नो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई ओन स्टाइल। आज लोगों का ये जुमला होता है, अल्लाह ताला हमें गुमराह होने से बचा दे। आखिर इनके करतूतों की बदौलत जिल्लत का अजाब इन पर टूट पड़ा और हमने इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही और बदअमली से परहेज करते थे। और जरा इस वक्त का ख्याल करो, जब अल्लाह के ये दुश्मन दोजख की तरफ जाने के लिए घेर लाएंगे, इनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा, फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो इनके कान और इनकी आंखें और इनके जिस्म की खाले इन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ कर रहे थे। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी, वो जवाब देंगी हमें इसी जात ने बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज को बुलवा दिया, इसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था और अब इसी की तरफ तुम वापिस जा रहे हो। बड़ी स्ट्रांग आयतें हैं। मिशारी राशिद ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरह से पढ़ा है, इसको हम बाद में सुनते हैं एंड पे ताकि हम इस हदफ को पूरा कर सके जो हमने रखा हुआ है। लेकिन आप जरा से सोचे, आपकी खालें बोल उठी एकदम बैठे हुए, पीछे भी ये बात आई थी, वहां मैंने रेफरेंस दिया था आपको इन आयात का। तो कभी भी गुनाह करते वक्त इंसान अपने आप को निडर ना करे, कोई बड़ी बात नहीं है कि कब ये हमारे ही खिलाफ बोलने लगे। इसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था, अब इसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम दुनिया में जरायम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल न था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी। 3 सेकंड गौर करें। बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को खबर ही नहीं होती। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा और इसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए। कितनी स्ट्रॉन्ग बात है। इस हालत में वो सब्र करें या ना करें, आंख ही इनका ठिकाना होगी। और अगर रजू का मौका चाहेंगे तो वो मौका उनको ना दिए तो कोई मौका इन्हें ना दिया जाएगा। हमने इन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए थे जो इन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। दाई के मुकाबले पे दोस्त खैरख्वाह बन के आते हैं और हिदायत से दूर कर देते हैं। दुनिया इतनी हसीन करके दिखाते हैं कि जो शौक उभरे भी होते हैं, कुछ जज्बे आए भी होते हैं, वो भी मान पड़ जाते हैं। आखिरकार इन पर भी वही फैसले अजाब चिस्पा होकर रहा जिनसे पहले गुजरे हुए जिन और इंसानों के गिरोह पर चिस्पा हो चुका। यकीनन वो खसारे में रहने वाले थे। आप नोट करें, आज के पारे में लफ्ज खसारा बहुत आ रहा है, बैंकरप्सी, क्योंकि सारी जिंदगी तो इधर उधर लगा दी तो अब तो आगे फिर खसारा ही होगा। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। दुआ करें अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी कि अल्लाह हमें खसारों से बचा दे। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, ये मुनकरीन हक कहते हैं इस कुरान को हरगिज ना सुनो। मेरे लिए 6 सेकंड इस एक आयत पे गौर करें। हर वो बंदा जो कुरान को सुनने से रोके वो मुनकर हक है, और अगर सुनना भी है और जब ये सुनाया जाए तो इसमें खलल डालो, वलगौ फी, बेकार बहसें छेड़ो, इख्तलाफी बातें करवाओ, शोर हो, आवाजें हो, क्यों, शायद कि इस तरह तुम गालिब आ जाओ। यानी इंटरप्ट करो उस माहौल की जो रूहानियत है, उसको ख़त्म करो, डिस्ट्रैक्शंस पैदा करो। कितने बुरे अजायम हैं। जवाब सुनिए, इन काफिरों को हम सख्त अजाब का मजा चखा कर रहेंगे, और जो बदतरीन हरकत ये करते रहे इनका पूरा पूरा बदला इन्हें देंगे। और वो क्या है, वो दोज़ख जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, इसमें हमेशा हमेशा के लिए इनका घर होगा। ये है सजा इस जुर्म की कि वो हमारी आयात का इनकार करते रहे। वहां ये काफिर कहेंगे, जरा से इस जुमले पे गौर कीजिएगा, ऐ हमारे रब, जरा हमें दिखा दे उन जिन्नों और इंसानों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हम इन्हें पांव तले रौंद डालेंगे ताकि वो खूब जलीलो ख्वार हों, हम इनको ठुड्डे मारेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी जन्नत हमसे दूर कर दी। जरा से इस हसरत को दिल पर ले। कितना आसान है दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाना, और कितना मुश्किल है अल्लाह के दीन पर जमना। 4 दिन जम जाए बड़ी बात है, इससे ज्यादा तो मुमकिन ही नहीं, ये तो मुश्किल ही बहुत है। याद रखिए, जुमला लिख लीजिए, कुरान के समझ कर पढ़ने से शैतान की जान जाती है। बेसोचे समझे पढ़े इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के समझ के पढ़ेंगे मुश्किल होगी। पहले सुनने नहीं देता, सुन लो तो मानने नहीं देता, मानने लग जाओ तो इस्तकामत नहीं देता, इस्तकामत की कोशिश कर लो रखने डाल देगा। हदीस में आता है क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, इकरा वरका, कुरान पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, जैसे आप लिफ्ट में से एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से यहां भी यही बात समझ आती है कि इस किताब से लोगों को रोकने के लिए किस दर्जे की शैतान की कोशिशें। सवाल है मेरा आपसे और आपका खुद से, क्या शैतान अपनी इस कोशिश में आज कामयाब है? ला तस्मा लिहाज़ल कुरान। और मजे की बात है कि लफ्ज भी कुरान है, कुछ और नहीं, क्योंकि गलती लग सकती है। लेकिन क्या वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुए या हम अपनी कोशिशों में कामयाब हुए? जब तक मुसलमान रूज पे थे मुसलमान कामयाब थे, कोशिशें शुरू से रही। याद रखिए, आज का दौर तो बहुत कर्टसी का दौर है, खुल के तो कोई नहीं बुरा कहता। उस दौर में तो मुंह भी आके कह रहे थे ला तस्मौली हाजिल कुरान, लेकिन जब मुसलमान गालिब होते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है और वो हो जाते हैं। इसी तरह जब मुसलमान मغلوب हो जाते हैं तो मुसलमान उनसे दब जाते हैं। और खास तौर पे आप देखिए कि पीछे खालों के बोलने की बात है, हमारे खिलाफ ये गवाहियां पड़ेंगी। और ये खालों के बोलने का तذکرہ सबसे पहले आपने सूरत निसा में पढ़ा था, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाले गल जाएंगी बदलना हम जुलूदन गैरहा, एक खाल उतार कर दूसरी डाल देंगे। और आपको वहां बताते हैं इब्ने अब्बास कहते हैं खालों की ये तब्दीली का अमल एक दिन में 70,000 बार होगा, क्योंकि जलने की सारी तकलीफ खाल पे होती है। दूसरी बात देखिए, सूरत यासीन में भी आप पढ़ा था खालों का, और यहाँ क्या है, समा और बसर, सुनने और देखने का ताल्लुक साथ ही खाल के साथ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये हाथ और कान और हमारे कान बज़ाहर दुनिया में हमारे मददगार हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्पाई हैं। स्पाई किसको कहते हैं? जासूस। ये हमारी हर चीज़ लिख रहे हैं, कल हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का खुलासा है, जब सुबह होती है तो सारा जिस्म जुबान के पास आता है और कहता है सुबह हो गई है, हमारे मामले में अल्लाह से डरती रहना, अगर तू सीधी रही तो हम सब जन्नत में जाएंगे और अगर तू टेढ़ी हुई तो हम सब आग में जाएंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी इन तीन चीज़ों की हिफाजत करें। और याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप और मैं कॉन्शियस हो जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाएगा। इसीलिए अगली आयतों में तस्वीर का दूसरा रुख, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ بھی آیات تدبر ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، فرق کیا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ اللہ کو وقتی طور پر رب کہہ دینا اور مشکل پڑھنے میں چھوڑ دینا یہ اور بات ہے، اور مشکل ہو، حالات آسان ہو، لوگ خوش ہیں، لوگ ناراض ہیں، اس پہ جمے رہنا یہ اور بات ہے، اللہ میں ثابت قدمی دے دے، ہوگا کیا؟ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو۔ کیا پتہ چلا، استقامت کا پہلا تحفہ دنیا میں جو ملتا ہے، فرشتوں کے نزول کی صورت میں ڈپریشن فری زندگی کی خوشخبری، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور دوسرا، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہاں وہ سب کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ سوچئے وہاں جا کے یہ خواہش پوری ہو جائے گی، دنیا میں تو نہیں ہونی، ایک بھی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے، کہاں ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ استقامت کی باتیں، استقامت میں قیامت ہے۔ آپ دیکھیے کہ عملی تقاضے جب تک کلمے کے پورے نہیں کریں گے، شروط لا الہ الا اللہ کو نبھائیں گے نہیں، تب تک یہ خوشخبریاں نہیں ملیں گی۔ حق پر سٹینڈ لینا سیکھیے، سچ بات کو ماننا سیکھیے۔ ہاں، اس کی قیمت آزمائشیں ہیں اور اس کی قیمت تانے ہیں، الزام ہیں، لیکن یہ مقام صدیقیت ہے۔ سچ کو سچ مان کر منوالے پارے کی پہلی آیت یہ تھی، اللہ آپ کو مجھے اس پہ ڈال دے، پکے ٹھکے ہوئے لوگ اللہ کو پسند ہیں، دنیا کا نقصان اٹھا لو آخرت کا نقصان نہ ملے، دنیا کی بے عزتی برداشت کر لو آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤ، اپنی بے عزتی برداشت کر لو اسلام کی بے عزتی نہ کرواؤ، رسم چھوڑ دو سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اور یہ کام اکیلے نہیں ہوگا، یہ مل کر ہوگا، ایک گرنے لگے دوسرا تھام لے۔ اپنے دوستوں کا اگر ہم رخ دیکھیں، ہر وہ دوست جو ہمیں دین کی اور استقامت کی طرف بلائے اس کا ہاتھ تھام لو۔ آپ گرنے لگیں گے نا تو کاکروچوں کی طرح باقی کاکروچ اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں کہ تم باہر کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، آپ بھی اپنے دوستوں کے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ हम दुनिया में अकेले नहीं जी सकते। और आप देखिए इस्तकामू कामू ये सारे जमा के सीखे आ रहे हैं। क्या पता चला कि हिदायत के सफर पे अकेला नहीं होता, पूरा माहौल ऐसा बनाओ कि किसी को भी मुश्किल ना लगे। जब उस सारी सेग्रीगेशन को पसंद करते हैं तो दो चार सिस्टर्स को पर्दा करना कोई मुश्किल लगेगा, सारा ही माहौल मुवाफिक हो गया। जब सबके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं तो क्या आपको अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना अबस लगेगा? हमारे बच्चे क्यों हमारे दुश्मन हो जाते हैं, कहते हैं मामा आप क्यों मेरे पीछे लगी रहती हैं? वो देखे फलां फलां उसकी मामा तो कुछ नहीं कहती, आप मुझे क्यों हर वक्त टोकती हैं, मैं क्यों ना ये पहनूं वो ना पहनूं, देखो मेरी दोस्त तो पहनती है। तो जब इज्तमाही माहौल बनाएंगे तो हमारे बच्चे हमसे ये शिकवा करेंगे नहीं, इसलिए इज्तमाहियत की बात भी है इसमें। और याद रखिए कि जब दीन पे इस्तकामत ली जाए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मुश्किल तो आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी में इस बाश 13 साल जो चोटें खिलाई गई ना मक्का में, वो असल में इसलिए थी कि जम जाए। आप इस दीवार पे कील लगाना चाहते हैं, पूरा दिन लेकर उसको आप थम के साथ दबाते जाएं, सहलाते जाएं, नहीं दबेगा, एक हथौड़ा मारेंगे जाएगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, तालीम और तरबियत में ऐसे सख्त हाथ लगने चाहिए कि बाद में अपनी जिंदगी के तकाजों को देखकर कोई फिसल ना जाए। आज हम इतने लाडले मुसलमान हैं, छोटी छोटी बात पे फिसलते हैं। आपको पता है कि जब तितली के जो बच्चा है ना वो एक कान में से निकलता है, एक छोटा सा खोल होता है, तितली का बच्चा जब पैदा होता है ना उस शेल को, जैसे मुर्गी का अंडा टूटता है तो चूजा निकलता है ना, एक शख्स ने देखा कि एक कान है और उसमें तितली का छोटा सा बच्चा निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको बड़ा उस पर तरस आया, ये छोटा सा कीड़ा ये कैसे निकलेगा। उसने जल्दी से पकड़ा, उसका वो जो बाहर शेल था वो तोड़ दिया, एक सेकंड में बाहर आ गया। आपको पता क्या हुआ, वो हैंडीकैप हो गया, वो तितली उड़ नहीं सकी, वहीं थोड़ी देर में मर गई। क्यों? कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी ना, वो जब उस शेल से निकलती है तो उसके परों के अंदर एक वैक्स होता है जो माँ के पेट में बच्चे की हिफाजत के लिए होता है, वो सारा वैक्स गिरता गया, उसके पर बिल्कुल नुचड़ गए, बाहर आई तोड़ गई। मुश्किल में आसानी है, ये आज के मुसलमानों को पैगाम है। जितनी मुश्किलें आप पे पड़े उतनी खैर निकाली है, देखिए वो हजारों मुश्किलें भी गुजर जाएंगी। असल बात है कि बच्चा भी तो दुनिया में इसी मुश्किल से गुजर कर आता है। अगर दरख्तों पे लगे हुए बच्चे मिल जाते तो क्या मुश्किल था, फल मिलते हैं, आम लगते हैं तो बच्चे भी लग जाते। अल्लाह बच्चे को दुनिया में एक मुश्किल तरीके से लेकर आता है, क्यों कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, लेकिन हम आसानियों को चाहते हैं। याद रखिए कि इस्तकामत की जरूरत होती कब है, जब मुखालफत है, मुखालफत होगी तो इस्तकामत होगी। जैसे आप खड़े हैं तो धक्का कोई दे फिर ही गिरेंगे ना, जो पहले से बैठा उसको धक्का कौन देगा। आज जब आप में अल्लाह की तरफ आते हैं ना तो लोग हमें कहते हैं सोच लो, नहीं चलो वापस, चलो अपने लाइफस्टाइल में, मैं खानदान का प्रेशर नहीं ले सकती। ऐसे वक्त में जम जाइए, जिद में आ जाइए, गलत चीज पे जिद बुरी है, अच्छी चीज पे जिद को इस्तकामत कहते हैं। इसी पे नबियों की तारीफें हुई और सब कुछ हुआ। अगर आज मैंने आपने सोच लिया कि जन्नत लेनी है तो जिद लगा लें कि अल्लाह फिर लेनी है, हर कीमत पे लेनी है, जन्नत से कम किसी चीज पे नहीं चलूंगी, लोहा लाट बन जाइए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह कह दिए तो अब चल पड़िए, वरना आप रब रब कहते रहे, 100 दानों की तस्बीह पकड़ लीजिए, तस्बीह लेकर चौक में बैठे लोग आपके सामने पानी की बोतलें रख देंगे, थोड़ा दम मुझे कर दो। 13 साल जो मुश्किलें आई थी वो इस्तकामत पे आई थी, आले यासर को जो खुशखबरियां मिली थी इस्तकामत पे मिली थी, बीबी सुमैया के जिस्म को 2 हिस्सों में चीरा गया था तो आजमाइशों पर चीरा गया था। आप और मैं आसानियों के खूगर है, अभी तो हम 4 बातें नहीं सुनते, हम तो एक धमकी सुन के परेशान होते हैं, हम तो एक पाबंदी सुन के परेशान होते हैं। असल मुसलमान को जो आज के दौर में पैगाम है वो यही है कि तुम अपने दीन पे जमते जाओ। आप देखिए जितना कील गहरा खुदा होगा ना उतनी भारी तस्वीर सहार लेगा, और कील ही ढीला डाला है तो आप उस पर घड़ी भी रखें तो वो भी गिर जाएगी। पूछिए खुद से, मैं एक ठुकी भी मुसलमान हूं कि जिस पे पूरी सोसाइटी का बोझ है, जो इस्लाम पे स्टैंड ले सकता है, या मैं इतना डोला हुआ कि जरा सा कोई मेरे ऊपर एक कागज भी लटकाए तो मैं हिल जाती हूँ। आज हम हिले हुए मुसलमान हैं, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के इस रास्ते में लगा दे। अगली आयतों से पहले तिलावत सुनते हैं, बहुत प्यारी आयतें हैं, मेरा दिल कर रहा है कि हम इसको साथ ही सुने, साथ साथ अपना मुहासबा करें, कितनी जमी हुई हूँ, कितनी इस्तकामत है और कितना अल्लाह की बात पे चलने को तैयार हूँ।
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
تلاوت کے دوران کوئی بات ذہن میں آئی مجھے ایسے لگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت کی قدر کرواتا ہے آپ دیکھیے کہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے معاشرے کے اندر ساتھ لے کر چلنے والی بات ہے بعض دفعہ ہماری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے نیکی کرتے ہوئے अच्छी दोस्त है कौन है, वो कहे नहीं थोड़ा सा और थोड़ा सा और। कभी आप देखिए जब बच्चा चलना शुरू करता है कितनी दफा गिरता है, फिर माँ उठाती है फिर चलाती है। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखें जो आपको नेकियों पे उभारे हैं। ये नहीं कि आप कुछ कहें मैं करूं नहीं, ये नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है सिर्फ हिम्मत तोड़ना।